दिवांध कौशिक शिशु हूं, दिन में अंधा। जो कौशिक शिशु एक पक्षी है, रात्रि में दिखता है उसको, दिन में दिखाई नहीं देता, उलूक पक्षी बोलते हैं उसको, उसको संस्कृत भाषा में कौशिक भी बोलते हैं। उसका शिशु, शिशु यानी छोटा सा बच्चा जो घोंसले में है, वो यदि धृष्टो भी, अगर वो ढीठ भी बन जाए, ढीठ का मतलब क्या, निर्लज, बेशर्म, यदि वो ढीठ भी बन जाए, निर्लज भी बन जाए उल्लू का बच्चा, तो किंकिल घर्म रश्मि रूपम प्ररूपयति, क्या वह सूरज का रंग बता सकेगा? कितना सुंदर दृष्टांत दिया कि अगर वो पक्षी जिसको दिन में दिखाई ही नहीं देता, अगर ढीठ भी बन जाए, निर्लज भी बन जाए, तो भी क्या कभी सूर्य का रंग, सूर्य का रूप बतला सकता है? अर्थात नहीं बता सकता, क्योंकि उसको दिखता ही नहीं। जिसको दिखता नहीं वो सूर्य का रंग कैसे बतला सकता? उसी प्रकार हम लोग पंचम काल के जीव हैं, हमको जिनेंद्र भगवान के जो सूक्ष्म गुण हैं वो नजर नहीं आते। जैसे ये जो प्रथम देव वाली पूजा, इसमें बहुत कुछ भरा हुआ है, समुद्र भरा हुआ है। एक वाक्य उसमें ये आता है, कहवत के 46 गुण गंभीर। क्या मतलब हुआ इसका? ये कहने के 46 गुण है, वास्तव में कितने हैं? वास्तव में हमारे ज्ञान का विषय है ही नहीं। आप इतने गुणों के भंडार है कि वो सारे गुण हमारी पकड़ में नहीं आने वाले। तो कहवत के 46 गुण, अब इसको निश्चय नहीं मत लगाना वहां पर, ये व्यवहार नहीं में पूजा है। निश्चय नहीं से अगर लगाओगे तो फिर ऐसा है कि निश्चय से तो अनंत चतुष्टय भगवान के गुण है, और बाकी गुण जो है वो पराश्रित होने के कारण व्यवहार से जिनेंद्र भगवान के गुण है, ठीक है ना। निश्चय से आत्माश्रित कौन से गुण है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो निश्चय से अनंत चतुष्टय चार गुण है भगवान के, और व्यवहार से जो तीर्थंकर नाम कर्म आदि पुण्यों के आश्रित प्रकट हुआ वैभव है, 34 अतिशय और 8 महाप्रातिहार्य, ये सारा वैभव जो है ये व्यवहार से भगवान के गुण के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन ऐसा हिसाब वहां नहीं लगाने का, वहां क्या हिसाब लगाना? कहवत के 46 गुण गंभीर का मतलब क्या है कि कहने को ये 46 है, 46 बहुत बड़ी संख्या होती है अपने हिसाब से, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भगवान के गुण 46 गुण किसी को मालूम है? 10 10 14 ऐसा नहीं चलेगा हिसाब, पूरे 46 बताना पड़ेंगे। जन्म के 10 अतिशय कौन से हैं?
केवल ज्ञान के 10 अतिशय कौन से हैं? देवकृत 10 अतिशय, यही नहीं मालूम अपने को। तो इसीलिए आचार्य कह रहे हैं कि हम तो सामान्य रूप से भी आपका वर्णन नहीं कर सकते, बारीक वर्णन तो बहुत दूर रहा। जिस प्रकार वो पक्षी जिसको सूरज दिखाई नहीं देता, वो सूरज का रंग क्या बताएगा?
तो अभी आज इसमें अपन ये 3 काव्य तक के व्याख्या को सीमित करते हैं, आगे के काव्यों का वर्णन आगे देखेंगे। अब इसके आगे कहते हैं, पहले उच्चारण देखेंगे, फिर बाद में पाठ करेंगे, और फिर उसके बाद अपन अर्थ देखेंगे। उच्चारण जैसा हम कर रहे हैं, स्वराघात, अनुस्वार और विसर्ग, इन 3 बातों पर आप गौर करिएगा। मोहक्षयाद अनुभवन्नपि नाथ मर्त्यु नूनंग गुणान, अनुस्वार के उच्चारण पर ध्यान देना, नूनंग गुणान गुण, नूनंग गुणान गणयितुन्न तवक्षमेत। अगले अक्षर पर उच्चारण जाकर के समा जाना चाहिए, माने उच्चारण का मेल अगले अक्षर में हो जाना चाहिए। तो इसलिए अपन हर जगह म नहीं बोल सकते। कल हमने उदाहरण दिया था, संहार, संयम, संसार, संबल, क्या हुआ इन इसमें अनुस्वारों का क्या हो गया? इन शब्दों में देखो आप, अनुस्वार का उच्चारण एक जैसा है क्या? ध्यान दिया आपने? संहार इस उच्चारण में और संयम इस उच्चारण में कितना अंतर है? और संसार, संबल, संभव, अंतर आ रहा है उच्चारण में? क्यों आ रहा है? क्योंकि अनुस्वार का उच्चारण उसके आगे वाले अक्षर में मिल जाता है। इसलिए अपन क्या है कि अनजाने में क्या करते हैं, अपने को पता नहीं है कि यहां पर कैसा उच्चारण करना है, तो हर जगह म म म लगा के रखते हैं, तो वो अशुद्ध हो जाता है उच्चारण। इसलिए ध्यान से सुनिए, मोहक्षयाद अनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान। अंग, अंग में जैसा उच्चारण है वैसे ही यहां पर नूनं गुणान गणयितुन्न। देखो तुन्न, तू के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण कैसा आया? न जैसा, क्योंकि आगे न है। तवक्षमेत, तवक्षमेत, ये स्वराघात कहलाता है। वैसे तो आप लोग सीख गए हैं स्वराघात, बहुत बार हमने कम से कम कितनी बार बोला होगा, 100 बार बोला होगा शायद हिम्मतनगर में स्वराघात शब्द, भक्तामर पढ़ाते समय और ये यहां चौमासे में, सब मिला करके कई बार बोला होगा लगभग। एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते, एक्यूरेट तो केवल ज्ञानी और अवधि ज्ञानी भगवान जाने, वो लगाएंगे नहीं ज्ञान अवधि ज्ञानी मुनि भी। अरे क्या करना, ऐसी चीजों में क्यों लगाना ज्ञान? तो तवक्षमेत कल्पांत वांत पयसह, 8 अक्षर भी हो रहे और यहां रुक भी सकते हैं आप, और रुकना ही पड़ेगा विसर्ग होने के कारण, विसर्जन करना पड़ेगा स्वर का। कल्पांत वांत पयसह, वसंत तिलका में कुछ कवियों के अनुसार 8 अक्षरों पर भी यति होती है। 14 अक्षर पर तो है ही यति, ये पूरा छंद कितने अक्षरों का है? एक चरण इस छंद में 14 अक्षरों का बनता है। 14 अक्षरों में से कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं है, 7 लघु है और 7 गुरु है, सबको बराबर बराबर सीट मिली है, इसलिए वो कोई हार जीत और बड़े छोटे का सवाल नहीं है। तो इसमें 8 अक्षरों पर भी कुछ बड़े बड़े कवियों ने यति मानी है। और यति भ्रंश नाम का एक दोष होता है, इसकी चर्चा अपन ने पहले की थी भक्तामर में, अभी आप लोग घबराना मत, नए लोग जो भक्तामर अटेंड नहीं कर पाए उन लोग डरना नहीं। यति भ्रंश उसको कहते हैं कि जहां पर 8 अक्षरों पर या फिर जहां भी अक्षर यति आ रही, यति माने रुकना, पाठ के समय जहां रुकना पड़ता है उसको यति कहते हैं। पाठ करते समय, काव्य पाठ करते समय कवि जहां विराम लेता है उसको यति कहते हैं। ये यति की परिभाषा हो गई। अब यति भ्रंश किसको कहते हैं? कि उस यति में शब्द यदि पूरा ना हो, माने शब्द आधा यति के बाद बोलना पड़े और आधा यति के पहले बोलना पड़े, तो वो यति भ्रंश कहलाता है। जैसे इसी काव्य में देखो, पहली पंक्ति में मोहक्षयाद अनुभवन नपी, अब ये नपी जो है ये इसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है, लेकिन नपी को अपन उसके बाद बोलते हैं यति के, इसलिए ये यति भ्रंश माना जाएगा। अथवा एक ऐसा ही शब्द ले लो अपन की जहां पर बिल्कुल पूरी तरह यति भ्रंश हो रहा है, 3रे काव्य की 2री पंक्ति को देखो, मस्मा दृश कथमधि, यहां 8 अक्षर हुए और मधीश शब्द यहां पर पूरा हुआ श पे 9वें अक्षर पे, तो 8 अक्षरों पर शब्द पूरा न होने के कारण यति के स्थान पर वो एक यति भ्रंश कहलाएगा। लेकिन यहां पर कल्पांत वांत पयसह, यहां तो सीधे सीधे 8 अक्षर हो रहे हैं, विसर्ग भी आया है, इसलिए बहुत एकदम खुशी के साथ आप विराम ले लेना, पर याद रहे तब लेगा, आप बीच में भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। फिर कैसा पढ़ेंगे आप हम बताएं, सैंपल नमूना, कल्पांत वांत पयस प्रकटोपी, प्रकटोपी मिला दोगे उसमें, मिलाना नहीं है, पयस यहां रुक जाना है, फिर नए सिरे से प्रकटोपी, दूसरी सांस में बोलो ना, क्या तकलीफ है, फायदा ही है, बल्कि बोलने में और सहूलियत होगी, एक सांस में बोलते हैं तो ज्यादा मेहनत पड़ती। कल्पांत वांत पयस प्रकटोपि यस्मात्। संस्कृत भाषा में प्रकट शब्द नहीं है, प्रकट शब्द है। कब? प्रकटोपि यस्मान् नियेत केन जलधेर, ये रेफ तक के रुकना, ननु रत्न राशि है। ठीक है, अब इसका उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं। मोह क्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो, नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत, क्या बोला आपने? अनुस्वार पर फिर से ध्यान देकर के दोबारा पाठ करते हैं। नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत, कल्पांत वांत पयसः प्रकटोपि यस्मान्। मियेत केन जलधेर ननु रत्न राशिः, दोबारा पाठ कर लो एक बार। मोह क्षयाद अनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो, नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत, कल्पांत वांत पयसः प्रकटोपि यस्मान्। मियेत केन जलधेर ननु रत्न राशिः, हे नाथ मोह क्षयात, मोह के नष्ट हो जाने से, मिथ्यात्व के समाप्त हो जाने से, मर्त्यः मनुष्य। मजेदार बात कह रहे हैं आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे नाथ, हे पार्श्व प्रभु, मोह क्षयात मिथ्यात्व के नष्ट हो जाने से, मर्त्यः मनुष्य, तव गुणान आपके गुणों का अनुभवन्नपि, अनुभव करते हुए भी, मिथ्यात्व नष्ट हो जाने से पार्श्वनाथ भगवान के गुणों का अनुभव मनुष्य कर लेता है, और उन पार्श्वनाथ भगवान के गुणों का अनुभव करते हुए भी नूनम गणयितुं न क्षमेत, नियम से वो गिनती नहीं कर सकता। क्या हुआ वाक्य का क्या पूरा क्रम बना? कि हे भगवान, हे नाथ, मिथ्यात्व के चले जाने से मनुष्य आपके गुणों का अनुभव तो कर लेता है, लेकिन उन गुणों की गिनती कदापि नहीं लगा सकता, क्योंकि गुण अनंत है, गिने नहीं जा सकते। अब यहां पर जो शब्द दिया अनुभवन्नपि, पार्श्वनाथ भगवान के गुणों का अनुभव करते हुए भी, इसका क्या रहस्य हो सकता है? अनुभव शब्द का क्या अर्थ है? अनुभव शब्द का क्या अर्थ होता है? एहसास होता है। कल जो आपको भूख लगी थी उसका एहसास आपके रिश्तेदारों को हुआ था या आपको? कभी भी अपनी चीज का एहसास दूसरे को नहीं होता। अपनी चीज यानी अपने जो सुख और दुख है उसका एहसास अपन ही कर सकते हैं, दूसरे उसको जान सकते हैं, ठीक है, जान सकते हैं, वो भी अनुमान के आधार पर। किसी को वेदना में तड़पते हुए देखकर सामने वाला जान लेता है कि इसको बड़ी पीड़ा है, और अपनी करुणा के कारण, अपनी संवेदना के कारण वो भी दुखी हो जाता है, सहानुभूति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन सहानुभूति अनुभूति नहीं है। ठीक है, अनुभूति किसको हो रही है? वेदना की, जिसको वेदना है उसको। और सहानुभूति किसको हो रही है? जिसमें करुणा है उसको। ठीक है ना, दोनों में कितना अंतर है। पर यहां आचार्य क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व के नष्ट होने से पार्श्वनाथ भगवान के गुणों का वो मनुष्य अनुभव कर लेता है, और अनुभव करते हुए भी गिनती नहीं कर सकता गुणों की। ये बड़ा विचारणीय शब्द है अनुभव, इसकी चर्चा भी थोड़ी सूक्ष्म है और मजेदार है। लेकिन अभी तो यहां पर जो लिखा है उसका अर्थ हमने आपको बता दिया। आगे दृष्टांत दे रहे हैं कि गिनती नहीं लगा सकता। जिस प्रकार कल्पांत वांत पयस जलधेहे, कल्पांत वांत पयस जलधेहे, जलधे का अर्थ क्या होता है? समुद्र। अब यहां समुद्र, कौन से समुद्र की चर्चा कर रहे हैं? कल्पांत वांत पयस, कल्पांत काल यानी प्रलय के समय, वांत पयस, वांत का अर्थ होता है उगल दिया है, पयस अर्थात जल जिसने, यानी कल्पांत काल प्रलय काल में इतनी लहरें उठती है समुद्र में, इतना तूफान मच जाता है, ऐसी खलबली उठती है कि उस समय पानी एकदम बाहर निकल आता है समुद्र का, उछल जाता है। सुनामी लहरों में पानी एक निश्चित दूरी तक ऊपर गया था। कितनी दूरी तक गया था? 35-40 फीट। और उस समय कितने ऊपर जाता होगा जब उसका निचला तल दिखने लग जाता होगा समुद्र का? होता है ऐसा कभी? आप, हम एक दृष्टांत देते हैं, आपके कॉमन दृष्टांत आपको जल्दी समझ में आएगा। रकाबी में जब चाय पीते हैं आप, तब आधा चाय पी लेने के बाद अगर थोड़ी सी हिल जाए तो उसके नीचे वाला भाग दिखता है। बस इसी प्रकार समुद्र उस समय इतना हिल जाता है तूफान में, प्रलय में, कि उसके नीचे वाला हिस्सा हिलने लग दिखने लग जाता है। अब दृष्टांत से बात स्पष्ट हो गई। और नीचे का हिस्सा जब दिखने लग जाता है तो उसमें जो रत्न है, समुद्र रत्नाकर है, रत्नों का स्थान है, तो समुद्र के निचले तल पर पड़े हुए जितने रत्न हैं वो ऊपर से दृष्टिगोचर होने लगते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि यस्मात् जलधे, जिस समुद्र से कल्पांत वांत पयस, कल्पांत काल में प्रलय काल में पानी ऐसे उछल गया है, और रत्न राशि प्रकटोपी, रत्नों की राशि प्रकट भी हो गई है, स्पष्ट सामने दिख रही है, तो भी केन मियेत, कौन उस रत्न राशि में रत्नों की गिनती लगा सकता है? उसका परिमाण कौन निकाल सकता है कि इसमें इतने रत्न हैं? अर्थात समुद्र का पानी उछल जाने पर रत्न दिखाई तो देते हैं लेकिन गिने नहीं जा सकते। उसी प्रकार मिथ्यात्व के चले जाने से भगवान के गुण अनुभव में तो आते हैं लेकिन गिने नहीं जा सकते। ठीक है, अब अनुभव में जो आते हैं भगवान के गुण, ये बात थोड़ी समझने की है। कैसे आ सकते हैं अनुभव में? अगर भगवान के केवल ज्ञान का अपने को अनुभव हो जाए तो फिर मजा आ जाए, फिर तो कहना ही क्या है। अथवा भगवान के अनंत सुख का अपने को अनुभव हो जाए तो फिर कभी भोजन ना लेना पड़े, माथे पर कभी लकीरें ना बने, चेहरा कभी उदास ना हो, कभी किसी पर क्रोध ना आए, बिल्कुल आनंद ही आनंद, अनंत सुख। लेकिन क्या कभी ऐसा संभव है? अनुभव किसका होता है ये पहले विचारने की बात है। द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, स्व का, पर का, किसका? भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, किसका? बहुत सोचने की बात है ये, और इस पर हर किसी को विचार करना पड़ेगा। जो पॉइंट्स अभी हम रखने वाले हैं आपके सामने, उस पर मतलब कोई भी पूरे हिंदुस्तान में, पूरी धरती पर, कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान हो, कोई भी हो, इन शंकाओं पर विचार करने पर अंदर का जो ज्ञान रूपी महल है उसकी नींव डगमगा जाएगी, हिल जाएगी। जो अपन ने दूसरों से सेकंड हैंड ज्ञान इकट्ठा किया है, जो उधार लिया है, वो सब खोखला सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो अनुभव शब्द आया है वो पार्श्वनाथ भगवान के गुणों का अनुभव है। सोचने की बात है, भगवान के एक भी गुण का अनुभव अगर किसी सामान्य संसारी सम्यक दृष्टि जीव को हो जाए तो तहलका मच जाए। अनुभव, इस शब्द पर गौर करने की जरूरत है। अभी तक तो जो बात चली आ रही है तो चली आ रही है। कुछ लोग बोलते हैं सातवें गुणस्थान में आत्मा का अनुभव होता है, कुछ लोग बोलते हैं चौथे गुणस्थान में आत्मा का अनुभव होता है, पर दोनों अनुभव शब्द के अर्थ के विषय में शायद पुनर्विचार की अपेक्षा रखते हैं। यानी ऐसा हमें लग रहा है कि उनको दोबारा विचार करना चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि सातवें गुणस्थान में आत्मा का अनुभव होता है, उनको भी अनुभव शब्द के अर्थ पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। और जो ये कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में आत्मा का अनुभव होता है, उनको भी अनुभव शब्द के अर्थ पर विचार करने की आवश्यकता है। बात दोनों गलत नहीं कह रहे हैं, ये बात और सुन लो। नए विवक्षा से हर बात सही है। आत्मानुभव की जितनी चर्चा है शास्त्रों में, उसमें से एक पंक्ति को पकड़कर एक व्यक्ति खींचातानी करता है, किसी और पंक्ति को पकड़कर दूसरा व्यक्ति खींचातानी करता है, दोनों दोनों पंक्तियों को नहीं पढ़ते। मुसीबत कहां है? दोनों पंक्तियों को दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ रहा है। प्रवचन सार की 237वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा है कि असंयमी को भी आत्मा का अनुभव होता है। अब भी उठाकर आपको खोलना हो तो देख सकते हैं, प्रवचन सार की 237वीं गाथा, जम अन्नानी कम्बम खवेदि भवसह सहस्र कोडी ही तन्नानी तिहि गुत्तो खवेदि उत्साह मित्तेण। वहां पर यह बात स्पष्ट अमृतचंद स्वामी की टीका में लिखी हुई है कि तो वहां पर यह बताया कि असंयतस्य च यथोदित आत्मानुभूति रूपम ज्ञानम, यथोदित आत्म तत्व प्रतीति रूपम श्रद्धानम वा किं कुर्यात्। माने असंयत के पास जो यथोदित, जैसा जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रणीत आत्मा का स्वरूप है, आत्म तत्व है, उसकी अनुभूति रूप ज्ञान है। बहुत वजनदार पंक्तियां हैं, इस पर ध्यान देने योग्य है। जो ध्यान नहीं देते ना असंयत के बारे में, बोलते कि नहीं असंयमी को नहीं हो सकता कुछ भी, उनको ये समझने योग्य बात है। और फिर तत्वसार की वृत्ति में जो पंक्ति आई है वहां पर ये लिखा हुआ है कि पांचवें गुणस्थान में होती है आत्मानुभूति, वो भी एक देश होती है। पांचवें गुणस्थान में एक देश आत्मानुभूति होती है। और आचार्य जयसेन स्वामी ने इन्हीं ग्रंथों की टीका में ये लिखा है कि जो शुद्ध आत्मानुभूति, अब देखो विशेषण पर ध्यान न दें तो फिर भटकन होना निश्चित है। एक जगह क्या लिखा है, यथोदित आत्मानुभूति, दूसरी जगह लिखा है एकदेश आत्मानुभूति, और तीसरी जगह लिखा है शुद्ध आत्मानुभूति। अगर इन विशेषणों पर अपन ध्यान न दें और सिर्फ एक आत्मानुभूति शब्द को लेकर के लड़ाई झगड़े करें तो फिर कभी भी उसका हल निकलने वाला नहीं है। वो उन्होंने शुद्ध आत्मानुभूति की जो बात की है जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय की टीका में, वहां पर उन्होंने लिखा है कि निर्मल विवेक ज्योति रूप जो शुद्ध आत्मानुभूति होती है वो निर्विकल्प समाधि की अवस्था में होती है, उसी का नाम शुद्धोपयोग है, उसी का नाम शुक्ल ध्यान है। पंचास्तिकाय की टीका में लिखा है अब कोई कहे कि भाई ये वाली आत्मानुभूति शुद्ध आत्मानुभूति सातवें गुण स्थान में होते है, तो उसकी बात भी झूठी हो जाएगी, क्योंकि वहां जिसकी बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही शुक्ल ध्यान वाली बात है। शुक्ल ध्यान सातवें में कहां से हो जाएगा? शुक्ल ध्यान कौन से गुण स्थान में? सातवें के ऊपर है, कम से कम आठवें में, वरना और ऊपर चले जाओ तो बहुत ही ऊपर है। तो इन बातों को लेकर विवाद करने पर कभी हल नहीं निकलने वाला। जितनी जगह ये उल्लेख है सबको इकट्ठा करके सामने रखो, आप 10 शास्त्रों में तो 10 शास्त्र रखो सामने और फिर निर्णय करो। और सबसे पहला निर्णय तो आपको यह करना है कि वो आत्मानुभूति है क्या चीज, अनुभूति का अर्थ क्या है, पहले तो यह समझो, फिर आगे विवाद करना। विवाद हमेशा ना समझी के कारण ही होता है, समझदार कभी विवाद नहीं कर सकता। याद रहेगा कि नहीं आपको यह कथन? विवाद कौन करता है? ना समझ ही करता है, समझदार कभी भी विवाद पैदा नहीं करता, क्योंकि स्यादवाद ही सब विवादों का हल है। जो सब विवादों का हल है वो विवादित कैसे हो सकता है? स्यादवाद निर्विवाद है और हठवाद ही विवाद की जड़ है, यानी विवाद का कारण हठवाद होता है। तो सबसे पहले अपन देखें, आत्मा शब्द के तीन अर्थ होते हैं और अनुभव शब्द के दो अर्थ होते हैं। अब यही कहीं गड़बड़ी हो रही है जिसके कारण झगड़े चल रहे हैं। अगर यही अपन सही चीज को पकड़ लें कि यहां आत्मा के तीन अर्थों में से कौन सा अर्थ निकालना अपने को, और अनुभूति या अनुभव के, अब कई लोग अनुभूति और अनुभव में भी अर्थ भेद करते हैं, बोले कि अनुभूति बहुत गहरी होती है, अनुभव सामान्य होता है, बोले अब ये अपने मनमानी है। फिर व्याकरण के हिसाब से देखो तो दो प्रत्यय हैं, धातु वही है और उपसर्ग भी वही है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है व्याकरण के हिसाब से। अनुभूति स्त्रीलिंग शब्द है और अनुभव पुल्लिंग शब्द है, और अनुभवन ये नपुंसक लिंग शब्द है। शब्दों में लिंग भेद जरूर है लेकिन अर्थ भेद रंज मात्र भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, तीनों के एकार्थवाची शब्द है। इसलिए वो बात तो व्यर्थ है कि अनुभूति गहरी होती है और अनुभव सामान्य होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुभूति, अनुभव या अनुभवन एकार्थवाची है। अब इसके दो अर्थ कौन से हैं? एक अर्थ तो अपन सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, जो भी अनुभव शब्द से परिचित है वो ये जानते हैं कि अनुभव का अर्थ होता है एहसास। अब सवाल ये पैदा होता है कि अनुभव का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है? उसकी खोज करना आवश्यक है, क्योंकि यहां पर जो अनुभव शब्द आया है, इस अनुभव शब्द का अर्थ एहसास तो हो ही नहीं सकता। विचार करके देखिए आप, बहुत निष्पक्ष होकर गहराई से सोचिए, पार्श्वनाथ भगवान के गुणों का एहसास क्या संसार का कोई भी दूसरा सम्यक दृष्टि जीव कर सकता है? उनके अनंत सुख का एहसास अपन कर सकते हैं क्या? कोई भी अगर सम्यक दर्शन हो किसी के पास तो कर सकते हैं? संभव ही नहीं है, क्योंकि पर पदार्थ का अपने को अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि अपने को अपने ही किसी अंश का अनुभव होता है। अपने द्रव्य का अनुभव होता है, गुण का अनुभव होता है, या पर्याय का अनुभव होता है, ये एक प्रश्न और है। क्या विचार है आपका? स्व और पर में से तो समझ में आ गया कि पर का अपने को अनुभव नहीं होता, ज्ञान होता है। एहसास वाले अनुभव की अपेक्षा से विचार कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो पर का एहसास तो अपन नहीं कर सकते, पर को जान सकते हैं। एहसास किसका होता है? अपनी ही किसी वेदना का अपने को एहसास होता है। अब बात यह है कि वर्तमान का एहसास होता है या अवर्तमान का? जैसे कल आपको रसगुल्ला खाना है, उसका एहसास आज हो सकता है? अब ऐसे दृष्टांत हम इसलिए देते हैं कि अगर आपका दिमाग भारी हो रहा हो तो थोड़ा लाइट हो जाए और फिर बात भी आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। क्या कल जो चीज आपको खानी है उसका एहसास आज हो सकता है? नहीं हो सकता। शाम को जो चीज खानी है उसका हो सकता है? अभी नहीं हो सकता। और अभी थोड़ी देर बाद जो कुछ खाना है उसका एहसास अभी हो सकता है? तो इससे यह सिद्ध हो गया कि भविष्य का एहसास वर्तमान में नहीं होता। अब क्या बच गया? भूत बाकी रह गया। अब भूत का एहसास अपन कर चुके हैं तो उसका आज वर्तमान में हो सकता है? वर्तमान में क्या हो सकता है? भूत का जो अपन ने एहसास किया है उसको लेकर के वर्तमान में अपन क्या कर सकते हैं? स्मरण कर सकते हैं। बहुत सही जवाब है कि भूतकाल में जो कुछ हुआ है उसका अपन वर्तमान में स्मरण अवश्य कर सकते हैं, यदि अपनी धारणा में वो चीज हो। अगर भूल भाल गए हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि वो चीज याद हो तो आप स्मरण कर सकते हैं। लेकिन स्मरण क्या अनुभव है? अनुभव का स्मरण और स्मरण का अनुभव,